समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है जमाकर्ताओं की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकिंग प्रक्रियाओं में हाल के बदलाव। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं भारतीय बैंकिंग और वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं, अब हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 0112331 0481, दूसरा नंबर 2371 7106 और तीसरा नंबर 2331444 पर कॉल करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आप हमारे सोशल मीडिया @handle@AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। हमारे साथ आज एक और विशेषज्ञ हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य महाप्रबंधक संचालन मैरी साग्या धनपाल। मैरी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।
और श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का हमारा विषय है जमाकर्ताओं की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकिंग प्रक्रियाओं में हाल के बदलाव, तो बसीर जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो वर्तमान में स्थिति है, इसमें बैंकिंग प्रक्रियाओं में कौन कौन से हाल के बदलाव किए गए जो हमारे श्रोताओं और जो हमारे बैंक में जमा करने वाले लोग हैं उनको किस तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं।
बेसिकली बैंकिंग अमेंडमेंट एक 2025 में 3-4 RBI ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 3-4 संशोधन किए, जिसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी के ऊपर है। नॉमिनेशन फैसिलिटी पहले भी थी, बट अभी RBI ने हर बैंक को कंपलसरी कर दिया कि नॉमिनेशन होना चाहिए। बिकॉज कभी जब किसी का डेथ हो जाता है अकाउंट होल्डर ज्वाइंट होल्डर का, तो काफी असुविधा पेश आती थी। तो अभी ये कि जब भी कोई नया खाता खुलेगा उसमें नॉमिनेशन कंपलसरी कर दिया गया। और नॉमिनेशन अब 4 पर्सन को कर सकते हैं, 50% या शेयर अकॉर्डिंगली। अगर किसी ने नॉमिनेशन नहीं करना तो वो भी बैंक को लिख के देगा कि नहीं करना चाहते, ताकि बैंक को कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, KYC के ऊपर काफी प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को कि बार बार कभी वीडियो KYC कभी re-KYC, तो उसके लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी संशोधन सिंपल फॉर्म्स कर दिए हैं, ताकि और KYC और जैसे डोरमेंट अकाउंट होने से पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी, और सेंट्रल KYC कर दिया गया ताकि बार बार आपको अपने आधार पैन और ये जो डॉक्यूमेंट ना देने पड़े। और प्लस अभी धीरे धीरे अभी आपने देखा कि KYC और फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के कई मामले आए हैं, तो उसमें भी 193 जो लाइन्स ओपन है, और यहाँ I4C गवर्नमेंट ने अपना जहां जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो वहां पे सिंपली जाके। और चौथा है जो है अनक्लेम्ड अकाउंट के ऊपर, कि जैसे लोगों को पैसा डाल के भूल गए पर उनके पास अभी जैसे याद आएगी किसी बैंक में खाता है, तो अभी उसके लिए भी RBI ने एक पोर्टल ओपन कर दिया जिसको हम UDGM कहते हैं, ताकि अनआइडेंटिफाइड डिपॉजिट असेस टू द इन्फॉर्मेशन। अभी 30 बैंकों ने इसमें खाता किया, जो भी अपना नाम से इसमें आप डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट या अपना पैन कार्ड से उसको सर्च कर सकते हैं। सर्च करने में मान लो आपका नाम उस बैंक में आ गया, तो फिर आप बैंक की वेबसाइट में या विजिट करके वहां उसको रिजॉल्व कर सकते हैं।
और इस बीच हरिद्वार से हमारे आज के पहले श्रोता रवि जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवि, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए।
हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी,
सवाल पूछिए
आपको। हाँ जी, मैं जानना चाहता हूँ जी, मैंने उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाया था काफी दिन हो गए, तो और मतलब उन्होंने मुझे मेरा ATM नहीं दिया, सॉरी। चलो, मुझे क्या करना पड़ेगा सर? मैं विशेषज्ञ से सवाल पूछना चाहूंगा। धन्यवाद सर।
जी, हमारे साथ मेरी माँ साग्या जी, जो आपके प्रश्न का उत्तर देंगी।
ये ATM कार्ड बहुत आसान है, हर खाते में ATM कार्ड देना है, जरूरी है बैंक को। तो आप बैंक में जाके एक एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक शायद आपको ऑनलाइन बैंकिंग भी नहीं दिया गया होगा। अगर ऑनलाइन बैंकिंग दिया है तो आप सीधा ऑनलाइन बैंकिंग से ही ATM कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक ऑनलाइन नहीं है तो आप सीधा बैंक जाइए, एक एप्लीकेशन दे देंगे तो, और आपको ATM कार्ड पहुंचा देंगे एक हफ्ते के अंदर।
भसीन जी, यहाँ पर एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे सामने है कि केवाईसी की जो प्रक्रिया है, कई बार लोग उससे बड़ा भ्रमित रहते हैं कि केवाईसी कब करना चाहिए, बैंक आपसे कब कहता है, और लोगों को कभी कभी लगता है कि अगर केवाईसी के लिए बैंक से मैसेज या कॉल आ रहा है तो वो एक फ्रॉड भी हो सकता है।
देखिए, केवाईसी कोई नई चीज नहीं है। नो योर कस्टमर, जब से बैंकिंग चालू हुआ है कस्टमर ग्राहक और उसमें हमें जानना चाहिए, बट जैसे जैसे नेट बैंकिंग और बैंकिंग हैबिट बढ़ गई है तो केवाईसी बेसिकली फ्रॉड को बचाने के लिए है। बैंक इसलिए केवाईसी कहता है कि जब भी हमने देखा है कभी कोई फ्रॉड होता है या कोई लोन फेल हो जाता है, क्रेडिट प्रॉब्लम आती है, तो कस्टमर उसके उस रेजिडेंस में मिलता नहीं है। तो इसलिए केवाईसी है कि आपका सिंपल आधार पैन है, और अभी और भी सिंपल कर दिया, आप खुद ही नेट बैंकिंग में जा सकते हैं या एक फॉर्म भर के कर सकते हैं। और अभी आरबीआई ने इसके कर दिया कि जो लो रिस्क कस्टमर है उनको अभी जून 26 तक थोड़ा सा उनको सहूलत दिया गया कि अपने कार्ड्स वगैरह ये चीजें बना लीजिए, ताकि री केवाईसी हर वैसे 2 साल बाद होता है, बट जैसे लोन और बोरर केस में हम उसको रेटिंग करते हैं क्रेडिट को, तो उसके अकॉर्डिंगली एक प्रक्रिया जो अभी बहुत आसान कर दी गई
जी। त्रिपुरा से अविनाश हमारे अगले श्रोता है। अविनाश जी, आपका प्रश्न क्या है?
जी सर नमस्कार, और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।
जी आपको भी, प्रश्न पूछिए।
जी मेरा सवाल ये है कि सर मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि जो अकाउंट होल्डर है वो अगर उसका डेथ हो जाता है तो बाद में जो नॉमिनी होते हैं, मान लीजिए 4 नॉमिनी हैं, तो उन सभी को क्या मतलब कि बराबर पैसा मिल सकता है या फिर उनके दस्तखत चाहिए, सभी 4 लोगों को उपस्थित वहाँ पर होना चाहिए, या फिर मान लीजिए कि एक अगर दे सकता है, बोलते हैं नहीं मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, तो ऐसा हो सकता है?
जी मेरी साग्या जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप?
जरूर, अभी ये जो 4 नॉमिनेशन है अभी ही शुरू हुआ, मतलब वो नया इंस्ट्रक्शन है, तो अभी तक शायद किसी का 4 नॉमिनेशन नहीं हुआ। अगर होगा तो आपको उसका परसेंटेज होगा, जितना जो नॉमिनेट कर रहे थे तो वो परसेंटेज देना है कि 10-10% या 25-25% उस तरह का देना है, तो उसके हिसाब से जो बैलेंस है आपके खाते में आपको सेटल हो जाएगा। सेटलमेंट के लिए बहुत आसान है, आपको सीधा आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और एप्लीकेशन चारों 4 लोग मिलके देना है, आपको बैंक इमीडिएटली आपके केवाईसी वेरीफाई करके आप खाते में पैसा डाल देंगे।
मैरी जी, जो निष्क्रिय खाते हो जिन्हें हम डोरमेंट अकाउंट्स भी बोलते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति उनको क्लेम करना चाहे तो किस तरह से उन्हें क्लेम कर सकता है बैंक में जाकर के, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए होंगे?
डोरमेंट अकाउंट या एक्टिव अकाउंट, अगर मतलब आप उसका डोरमेंट अकाउंट क्लेमिंग कर रहे हैं या डिसीज्ड को बोल रहे हैं?
जी डोरमेंट के अकाउंट की बात कर रहे हैं।
तो डोरमेंट का अकाउंट, अगर डोरमेंट क्या है, बैंक में 2 साल का अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन नहीं कर देते हैं तो उसको डोरमेंट अकाउंट कहा जाता है। तो उस डोरमेंट अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर एक बार रीकेवाईसी करवाना पड़ेगा, मतलब आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट करना है, और जब बैंक आपका डॉक्यूमेंट्स वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डोरमेंट से एक्टिव हो जाएगा। इसके पहले बैंक को एक ट्रांजैक्शन करना है, अभी आरबीआई ने वो चेंज कर दिया, अभी केवल केवाईसी अपडेशन करने से आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है।
जी वसीम जी, इससे जुड़ा मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो डोरमेंट अकाउंट है, मान लीजिए 2 साल से या लंबे समय से एक्टिव नहीं है, और इसी बीच में अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो, और नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी नहीं हुई, उस स्थिति में क्या होगा?
नहीं, जैसे मैंने बनाया कि डोरमेंट हम 2 साल में करते हैं और उसके ऊपर हो तो फिर 10 साल हो तो इनऑपरेटिव चला जाता है। पर अगर डेथ केस हो तो उस केस में अगर नॉमिनेशन नहीं है तो फिर लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट आता है, तो थोड़ा इसी को प्रॉब्लम को बचाने के लिए आरबीआई ने नॉमिनेशन कंपलसरी कर दिया। मान लो जी किसी का नॉमिनेशन नहीं और 4 उनके क्लेमेंट है फैमिली में, तो वो फिर कोर्ट में जाता है, फिर वो कई सालों के साल केस चलता रहता है, तो इसलिए नॉमिनेशन होना जरूरी है ताकि किसी जैसे कोई डेथ हो तो पैसा अनक्लेम उसमें जाने की बजाय उस इंसान को मिल जाए।
बैंगलोर से श्रीकांत हमारे साथ है। श्रीकांत जी सवाल पूछिए।
हाँ जी नमस्कार जी, मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ बैंगलोर से।
जी
भाई साहब, मेरा प्रश्न ये है कि कुछ साल पहले ये सुने थे कि रिजर्व बैंक 5 लाख रुपए तक की गारंटी देगी अगर आपकी एफडी किसी भी बैंक में है और बैंक डिफॉल्ट कर जाती है, तो क्या उन्होंने ये राशि बढ़ाई है और क्या ये सारी बैंकों पे लागू पड़ती है? और मुझे ये जानना है क्या ये बंधन बैंक पे भी लागू होता है? और एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह 15 साल पहले सीनियर सिटीजन को 1% ज्यादा ब्याज मिलता था, अभी वो घट के 0.5 पे गिर गया, तो भाई साहब रिक्वेस्ट है सरकार से और आपसे कि जनरल का अगर 0.1% कम करें तो सीनियर सिटीजन का 0.5 ज्यादा बढ़ा सकते हैं आप। धन्यवाद
जी भसीन जी।
देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है उसे हम DICG से बोलते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें RBI देखो जितने भी बैंक है, चाहे बंधन बैंक है, एक्सिस बैंक है, SBI है, ये सारे बैंक सेक्शन 2B शेड्यूल के अंडर RBI उनको लाइसेंस देता है जो हम कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करते हैं, इसलिए सारे बैंक सेफ है। SBI भी सेफ है, बंधन बैंक भी सेफ है, क्योंकि RBI ने लाइसेंस दिया इसको। अब DICG कहते हैं कि 5 लाख रुपए अगर कल को कोई बैंक में प्रॉब्लम होता है तो 5 लाख आपको इमीडिएट मिल जाता है और बाकी जो पैसा होता है 3 महीने के अंदर जो बैंक किसी बैंक को टेक ओवर करेगा। RBI का गारंटी, RBI एक फादर है बैंक्स का जो एश्योर करता है कि इन पब्लिक सेक्टर बैंक और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बंधन बैंक है, पैसा आपका नहीं जाएगा। 5 लाख आपको इमीडिएट मिल जाता है 3 महीने के प्रक्रिया के बाद, मर्जर के बाद जो बैंक उसको लेता है, जैसे OBC हुआ, PNB हुआ, या OBC मर्ज हुआ तो PN में पैसा मिला, ग्लोबल ट्रस्ट फेल हुआ तो OBC ने लिया उसको, या बैंक ऑफ राजस्थान मर्ज हुआ तो ICICI बैंक ने, तो पैसा नहीं आपका जाएगा 5 लाख का। अभी आपकी बात सही है कि काफी समय से ये राशि है, अभी ये चर्चा चल रही है कि इसको 10 लाख या बढ़ा दिया जाए, पर ये 5 लाख से ये मत समझिए कि आपको हर बैंक में अलग अलग 5-5 लाख ही जमा करना, पैसा सेफ है आपको, इमीडिएटली आपको पैसा मिल जाता है। सेकेंड आपका सीनियर सिटीजन का, आपकी बात सही है कि पहले 1% होता था फिर 0.5% बढ़ता था, तो ये बढ़ना चाहिए। अभी हम मौका मिलेगा तो हम RBI या किसी सरकार को आपको ये करेंगे, क्योंकि हम मैं खुद ही सीनियर सिटीजन हो गया हूँ तो हमें भी इस बात का तो अभी हम सहमत है कि ये होना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए FDs होती है या उसका पेंशन या रिटायरमेंट फंड होता है। तो हम आपकी बात से कभी अगर किसी फॉरम में मौका मिला तो हम जरूर इस चीज को।
जयपुर से प्रकाश हमारे साथ है फोन लाइन पर। प्रकाश जी स्वागत है, सवाल पूछिए।
हेलो
जी प्रकाश जी, प्रश्न पूछिए।
निखिल जी आपको और दोनों विशेषज्ञों को और साथ ही पूरे देशवासियों को पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
जी आपको भी जी। आपको
सर मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तो जैसे मान लीजिए कोई दृष्टि बाधित है और वो अपना स्वयं का रोजगार खोलना चाह रहा है तो उनको चेक बुक के लिए बोला जाता है, कोई भी जैसे प्राइवेट लोन करवाते हैं या कुछ तो उनको क्या चेक बुक दी जाती है, ATM या चेक बुक? और दूसरा मैं ये पूछ रहा था सर से कि मेरी मम्मी की डेथ हुई थी 27 मई को और उनके अकाउंट में नॉमिनी नहीं था, पैसे पड़े हैं सर, हमने 10 चक्कर लगा लिए वो दे नहीं रहे, तो क्या करना होगा इसके लिए, ये पूछा था
जी। मेरी साज्ञा जी आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
हाँ, जी को ये है कि आपका मम्मी की देहांत हो गया तो आपका उनके खाते में पैसा है। अभी बहुत सिंप्लीफाइड रूल्स RBI ने बना दिया वेरी रिसेंटली, 15 लाख तक आपके अकाउंट में नॉमिनेशन ना होने पर भी आपको उतना ज्यादा श्योरिटी वो कुछ नहीं चाहिए, एक एप्लीकेशन और एक फॉर्म्स होता है जो हर बैंक में अलग अलग होता है, वो फॉर्म वो भी यूनिफाइड कर रहे हैं RBI, तो वो फॉर्म देने से आपको पैसा मिल जाएगा। अभी बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया प्रोसेस RBI ने
जी। भसीन जी आजकल अगर देखा जाए तो जिस तरह से हम ऑनलाइन बैंकिंग का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार बढ़ावा इस चीज को दिया जा रहा है, तो सुरक्षा की जहां तक जमाकर्ताओं की सुरक्षा की बात आती है तो बैंक क्या क्या सलाह देता है लोगों को कि आपको ये चीज करनी चाहिए और ये चीज नहीं करनी चाहिए?
यार निखिल मैं आपके पास सहमत हूँ, एक तो हम हर चीज डिजिटल ऑनलाइन पे काफी फोकस कर रहे हैं हर बैंक, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो या फॉरेन बैंक, या बट उसी के साथ है कि हम डिजिटल तो हो रहे हैं, RTGS, NEFT, भीम, हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग बैंक नहीं अब विजिट नहीं करते। मैं ब्रांच हेड भी रहा हूँ, हमें देखा था कि पहले जैसे ही ब्रांच खुलती 10 बजे लोग वॉक इन आता था और पूरे दिन में 400-500 बड़ी ब्रांचों में, बट धीरे धीरे जैसे डिजिटल होता जा रहा है, ऑनलाइन होता जा रहा है, तो फुटफॉल कम हो गया ब्रांचों में, बट उसके साथ ये है कि फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पहले आपने देखा कुछ वर्ष पहले OTP का फ्रॉड हो रहे थे, अब OTP को हमने पॉपुलर किया था, अब लोग OTP छोड़ा, बट अब डिजिटल अरेस्ट एक नया चीज आ गया, जबकि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी लॉ नहीं है।
QR कोड
भी अब पता चल गया लोगों की नहीं करते लोग, क्योंकि जो QR कोड भी कॉपी हो रहे थे, फ्रॉड हो रहे थे, अभी डिजिटल अरेस्ट के केसेस आ रहे हैं जहां पे सीनियर सिटीजन और अच्छे अच्छे लोग, ऐसे डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, जबकि हम RBI पुलिस CID इवन KBC कौन बड़ा करोड़पति तक में भी हम RBI पॉपुलर कर रहे हैं कि कभी भी अपना OTP कभी भी कोई लिंक को शेयर मत कीजिए। और वैसे भी हर बैंक अपना स्टाफ मीटिंग्स भी करते हैं, सेमिनार कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं कि अपने आप को पैसे को बचाना पड़ेगा, بٹ پرابلم ہے کہ اگر ڈیجیٹل اریسٹ ہوتا ہے یا کوئی ڈیجیٹل فراڈ ہو جاتا ہے, اب کسٹمر برانچ میں آتا ہے تو برانچ کو معلوم نہیں ہوتا اسٹاف کو کہ کیسے ہیلپ کرے. تو اسی لیے ہم سارے بینک اسٹاف کو دیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کسٹمر سے بات کریں, جہاں بھی کسٹمر چاہے چیک بک کے لیے آئے, کیش ڈپازٹ, ان کو اویئر کرتے رہیں کہ کوئی بھی انفارمیشن اپنی او ٹی پی یا پاسورڈ یا کوئی بھی ایسی اس پہ سائٹ پہ مت جائیں جس میں. تو اس لیے بینک ٹائم ٹو ٹائم اویئرنیس, اور ابھی ہم نے کئی ویب سائٹس بنا دی ہیں کہ اس میں اپنے آپ کو بچا سکتا.
اگر ایک اکاؤنٹ ہولڈر کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے پوچھوں تو کیا یہ اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے صحیح ہوگا کہ ٹائم ٹو ٹائم اپنی برانچ میں جا کر کے وزٹ کرتے رہیں؟
ہاں, کرنا چاہیے وزٹ. دیکھیں جہاں آپ کا, دیکھو آپ کا ہارڈ ارنڈ منی ہے, اب ہر چیز ڈیجیٹل نہیں ہو سکتی ہے نا. چاہے 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد جب آپ کسٹمر برانچ اسٹاف سے ملیں گے, ان کا بہیویئر پتا چلتا ہے کہ کس ٹائپ کا بزنس کر رہے ہیں, کیا ان کو, تو اس سے کے وائی سی تو بیسکلی نو یور کسٹمر خالی پین کارڈ آدھار کارڈ نہیں ہے. ہم یہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں, نو یور کسٹمر مینز اپنے کسٹمر کو پہچاننا کہ آج اس نے اگر سیلری اکاؤنٹ کھولا ہے, کل کو اس کا پروموشن ہوتا ہے, مان لو آپ کی انکم اسے 25,000 روپے, بٹ دھیرے دھیرے مان لو ایک سال بعد اس کی 50,000 ہوگی, تو اب اس کے کھاتے میں اور چیزیں بھی آئیں گی نا. اس کو ہم ایف ڈی دے سکتے ہیں, ہم ان کو کراس سیلنگ کر سکتے ہیں. ہم مان لیجیے کوئی سیلریڈ پرسن ہے جس کی 50,000 آتی ہے, مان لو اس نے سیلری چھوڑ, جاب چھوڑ کے بزنس شروع کر دیا, اب اس کو 5 لاکھ آنے لگا, تو پروفائلنگ ہم بدلتے رہتے ہیں. اس لیے بینک سے ملنا, اور جیسے کوئی ودیش جاتا ہے تو جانے سے پہلے بینک کو بتانا چاہیے کہ آپ دبئی جا رہے ہیں, این آر آئی بنے, کو بینک کو معلوم نہیں ہوتا. تو اس لیے ان چیزوں سے کہ کے وائی سی مینس کسٹمر سے ملنا جلنا, اور بینکس نے بھی اب الٹا ہو گیا شروع, اب بینک برانچ میں نہیں بیٹھتا کسٹمر اسٹاف, ہم نے ڈور اسٹاپ بینکنگ شروع کر دی, اب بینک والے جاتے ہیں کسٹمر سے ملتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کسٹمر بہیویئر ہمیں ایکسپیرینس کرنا چاہیے.
اور اس بیچ اوڈیشا سے نہار رنجن باریک ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں. نہار جی سواگت ہے, سوال پوچھیے.
سر میرا کوشچن ہے, گورنمنٹ اکاؤنٹ میں ای کے وائی سی اویلیبل ہے یا نہیں؟
جی ابھی تھوڑی دیر پہلے میری میڈم نے آپ کے پرشن کا جواب دیا, تو میں پھر چاہوں گا ایک بار آپ کو بتا دیں.
ہیلو
جی, ڈورمنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں جانکاری چاہ رہے تھے یہ ابھی.
ہاں, ڈورمنٹ اکاؤنٹ کو بھی ڈی کے وائی سی کروانا ہے, کیونکہ ابھی آر بی آئی نے بول دیا کہ ابھی کسٹمر 2 سال تک آپ کے پاس نہیں آیا, تو پھر اس کو کے وائی سی ڈاکومینٹس دے کے بینک کو اس کو ری کے وائی سی کرنے کے بعد آپ کو آٹومیٹکلی اکاؤنٹ آپریٹ ہو جاتا ہے.
جی میری جی ایک پرشن اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں یا پھر جو دیویانگ بھائی ہمارے ہیں اور گرامین جمع کرتا جو ہیں, ان کے لیے کے وائی سی اور کھاتا سنچالن کی پرکریا میں کس طرح کی سویدھائیں کچھ اسپیشل انہیں دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی ہیں؟
ہاں, ان ریسپیکٹ آف آل دیویانجن پیپل, دیر از دے کین ناؤ دا ڈور اسٹیپ بینکنگ, نو سو بینکس آر گوئنگ ٹو دا کسٹمرز اینڈ گیٹنگ دا ری کے وائی سی ڈن. So in that way, bank is giving the benefit, extra benefit over there. And in respect of basically, agar ye sare log low risk customers hote hain, to low risk customers means only once in 10 years. Agar aap har saal apna account mein thoda bahut transaction karte jayenge na, to 10 saal tak aapko re-KYC karne ki koi zarurat nahi padegi. Lekin agar aap 2 saal karne ke baad fir aap operation nahi kiya hoga, تو وہ ڈورمنٹ ہو جاتا ہے, تو پھر ری کے وائی سی کرنا پڑے گا. تو یہی بار بار کسٹمرز کو بہت یہ ہوتا ہے, دے ہیو اے ہارٹ برن, دیٹ ہر 2 سال بینک ہم سے ری کے وائی سی مانگ رہے ہیں. ایکچولی اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کا اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہو گیا تھا, اس لیے آپ کو پھر ری ایکٹیویٹ کرنا ہے, اور ری ایکٹیویشن کین بی ڈن اونلی تھرو ری کے وائی سی. یہی اگر سب لوگ سمجھ جاتے ہیں نا, تو ہر سال ان کا کم سے کم ایک ٹرانزیکشن کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو اور لائیو رہ گیا, اور آپ کو اتنے بار کے وائی سی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی.
جی راشد احمد خان صاحب ہیں چھترپور مدھیہ پردیش سے. راشد جی سوال پوچھیں.
جی میں چھترپور مدھیہ پردیش کے راشد احمد خان.
جی
آپ سبھی لوگوں کو نوتن ورش 2026 کی ہاردک بدھائی شبھ کامنائیں.
آپ کو بھی سوال پوچھیں.
اپن سر جب پوسٹ آفس میں کوئی ایف ڈی یا این ایف سی وغیرہ لیتے ہیں تو کسی نہ کسی ایجنٹ مادھیم سے لیتے ہیں اپن لوگ, اس میں تھوڑا بہت اپن کو کمیشن بھی مل جاتا ہے, کیا اس طرح کی پرکریا بینکنگ کے اوپر بھی لاگو ہے کیا؟
جی بسن جی.
نہیں جی نہیں, بینک میں ایسا کوئی مڈل مین یا میول پرسن نہیں ہوتا, کیونکہ بینک میں آپ ڈائریکٹلی سیدھا برانچ میں جا سکتے ہیں, کسٹمر سروس ہے, آفیسر ہوتے ہیں, برانچ ہیڈ ہوتے ہیں, تو آپ ڈائریکٹلی سیدھا بینک سے, بینک ایسا کوئی کمیشن نہیں دیتا جیسے پوسٹ آفس میں ایجنٹ یا ایل آئی سی ایجنٹ دیتے ہیں.
भसीन जी, यूपीआई मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में जो हाल के बदलाव हुए हैं जो हम देख रहे हैं, तो इसका मोटिव मेनली यही होता है कि जो जमा करता है उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिया जाए।
या यूपीआई से आपका ना सेफ है, बाकी जितने भी यूपीआई आप देखेंगे उसमें आपका ना तो अकाउंट नंबर होता ना खाता नंबर होता। हर कस्टमर को एक यूपीआई एक स्पेशल मेल आईडी जो क्रिएट करता है सिस्टम, तो इसलिए यूपीआई जो पेटीएम से या जिससे लिंक है तो वो आरबीआई के सॉफ्टवेयर से इनसे लिंक होकर जाता है, तो इसलिए उसको सेफ माना जाता है। तो इसलिए हर कोई आप देखा कि यूपीआई के ऊपर ही फॉलोअप कर रहे हैं ताकि आपका सेफ बैंकिंग रहे। और उसमें
जी मैरी जी, एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जो जमा बीमा कवर होता है जिसे हम DICGC भी कहते हैं, तो उसमें किस तरह के बदलाव हाल के समय में किए गए जिससे कि जमाकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ जाए?
बेसिकली जैसे कसिन जी ने बताया कि वो बेसिकली लिमिट ही 5 लाख है, लेकिन इट डज नॉट मीन दैट यू लूज योर मनी। वो इमीडिएटली आपको, अगर आपके पास यू समझो कि 20 लाख है, आपको 5 लाख इमीडिएटली इस इंश्योरेंस के हिसाब से आपको 5 लाख मिल ही जाएगा, और बाकी 15 लाख जैसे कुछ टेक ओवर या कुछ समय लगेगा, लेकिन जैसे ही वो स्टेबलाइज हो जाएगा वो बाकी पैसे भी आपको मिल ही जाएगा। But there is a thought for increasing the DICGC claim from 5 lakh to 10 lakh.
जी हाँ, अभी वो चल रही है उसके ऊपर चर्चा कि उसको बढ़ाया जाए, पर अभी ऐसा जैसे मैरी मैम ने बताया।
जी, और इस बीच में हमारे साथ फोनलाइन पर एक और हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं, राम जी गर्ग, जो कि रीवा मध्य प्रदेश से हैं। राम जी, प्रश्न पूछिए।
जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई शासकीय कर्मचारी है, उसका बैंक में पेमेंट आता है, सेवानिवृत्त हो चुका है, तो उसमें नामनी में 2-3 बच्चे अगर उसके हैं तो 2-3 बच्चों का नाम उसमें वो रखवा सकता है नामनी में कि नहीं, कि एक ही बच्चे का सिर्फ रहेगा?
जी मेरी जी,
बोले थे ना इसके पहले एक ही बच्चे को नॉमिनेशन रख सकते थे, लेकिन जैसे रिसेंट गाइडलाइन आरबीआई ने रिलीज कर दिया कि 4 नॉमिनेशन तक दे सकते हैं, तो 4 लोगों को आप नॉमिनेशन कर सकते हैं।
जी भसीन जी, जैसे कि हमने शुरुआत में टॉपिक पे डिस्कस किया था कि जमाकर्ताओं की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकिंग प्रक्रिया में जो हाल के बदलाव किए गए हैं, तो अभी आने वाले समय की जब हम बात करते हैं लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन होना ही है। ये तो पॉजिटिव सी बात है कि परिवर्तन इसलिए भी होना है कि लोगों की बैंकिंग की सुरक्षा बढ़ती जाए। ऐसे में नेटवर्क की जहां तक बात है, अगर किसी तकनीकी विफलता की स्थिति में लेन देन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उस स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
टेक्निकल नेटवर्क
जी,
देखिए टेक्निकल नेटवर्क में अगर वैसे तो बैंक की रिस्पांसिबल होता है, अगर कोई किसी का फॉरेन एक्सचेंज या ट्रेड फाइनेंस कोई ऐसा लॉस हो जाता है तो बैंक पे करता है, बिकॉज अब बैंक, अब हम कोर बैंकिंग सिस्टम से अब देखा जाए तो हम 2000 से लेके हम डिजिटल हुए, फिर हम मैकेनाइज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तो अभी हर बैंक ने अपना नेटवर्क एक ब्रांड उससे नहीं है, आईटी नेटवर्क, अब उन्होंने 3-4 कुछ रिलायंस के साथ है, ताकि अब वो प्रॉब्लम नहीं रही। पहले होता था कि बैंक में हम जाते थे नेट नहीं आ रहा था, अब एक लाइन बंद हो दूसरे स्विच हो जाता है, तीसरा हो जाता है, बिकॉज अभी सब कुछ डिजिटल है, तो इसलिए नेटवर्क अगर कोई एरर होता है और कोई लॉस होता है तो बैंक ऑपरेशनल एरर मान के उसको उसके जो कस्टमर का नुकसान होता है उसको पूरा करता है।
जी, शिमला से राकेश हमारे आज के अगले श्रोता है। राकेश जी, आपका सवाल क्या है?
हेलो
जी राकेश जी, सवाल क्या है आपका?
जी जी, मेरा सवाल ये कि जैसे कि हमारे सीनियर जैसे बुजुर्ग लोग हैं वो बार बार जो है बैंक नहीं जा सकते, क्या वो EKYC घर बैठे करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से?
जी भसीन जी,
हाँ नहीं हो सकते, पोस्ट ऑफिस नहीं, हम बैंक वाले भी आ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। अगर आप जैसे एक तो वीडियो KYC की सुविधा भी हो गई है बैंकों में, अगर आप जैसे कोविड में आपने देखा था कि लोग नहीं आ सकते थे इवन लोन सैंक्शन, तो एक बैंक का सुविधा वीडियो KYC, आप घर बैठे ही आपको एक नंबर आएगा, बैंक ऑफिसर होगा आपको, आपका वीडियो दिखेगा, आप अपना आधार पैन दिखा सकते हैं, एक तो वो होता है। दूसरा, अगर आप बैंक को स्पेशल रिक्वेस्ट भेजेंगे या लिखित में देंगे तो बैंक वाले घर आके भी कर सकते हैं। आजकल हमारे पास टैप सिस्टम भी है जिसमें GPRS होता है, हम उसी टैप को लाके वहीं फोटो खींचते हैं, वहीं डॉक्यूमेंट लेते हैं, तो ये सुविधा हो गई काफी बैंकों में, जो आपको अगर नहीं जा सकते तो घर बैठे बैठे भी आपको ये सुविधा KYC करवाया जा सकता है,
यानी कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, बैंक से संपर्क करने की जरूरत है कि भाई हमारा KYC कराना, तो आप
बैंक संपर्क भी करके जब जाएगा तो एक दो खाते और भी लाएगा, दोनों बेनिफिट हो जाते हैं, बिकॉज अगर कस्टमर खुश है तो हम भी खुश हैं, क्योंकि अगर फैमिली में जाएगा 4 लोग हैं, एक खाता खोलेगा तो 3 और खुलेंगे, तो ये बैंक अब सब इवन पब्लिक सेक्टर SBI में सब सरकारी प्राइवेट सब अब एक ही हो गए क्योंकि सबका नेट बैंकिंग हो गया अपना ब्रांचेस सबके ज्यादा है और कस्टमर और धीरे धीरे आपने देख रहे हैं कि मर्जर भी होता जा रहा है अभी पहले 27 पब्लिक सेक्टर था 12 रह गए अभी फिर चर्चा चल रही है ये भी नया टॉपिक अभी चल रहा है कि कुछ टाइम पर 4-5 बैंक ही रह जाएंगे तो कस्टमर सर्विस तो हमेशा पहला हमारा रहेगा कि कस्टमर का ट्रस्ट और सर्विस ही बैंकिंग का मेन आधार है।
हर्षवर्धन पांडे मध्य प्रदेश से आज के अगले श्रोता हैं। हर्षवर्धन जी सवाल क्या है आपका? हर्षवर्धन जी सवाल पूछिए आप।
हाँ मेरा सवाल ये है कि वो जमाकर्ताओं के लिए बैंक में ऐसी कौन सी योजना है जो जमाकर्ताओं को फायदा पहुंचाती है?
जी मेरी साग्या जी
उनके भविष्य के लिए फायदेमंद रहे।
जी मेरी साग्या जी आप इन्हें उत्तर दें।
निखिल जी आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट वर्ड कैन इट बी टोल्ड इन इंग्लिश?
जी
मैडम वो कह रहे हैं कि डिपॉजिट वाले जो कस्टमर है उनको क्या क्या सुविधा बेसिकली तो FDs है हमारे पास फिक्स डिपॉजिट है अभी हमारे पास इंश्योरेंस टाई अप हो गए हैं जो हमारे हर बैंक अपना 2 या 3 कंपनियों से इंश्योरेंस कराता है म्यूचुअल फंड की सुविधा है जो जैसे कस्टमर आपका रिस्क लेना चाहे FD सेफ मानी जाती है बट सेफ के साथ उसका इंटरेस्ट कम होता है उसमें तो FD हो गई आपकी आपके म्यूचुअल
फंड रेकरिंग डिपॉजिट
हाँ
छोटा छोटा अमाउंट रख के आपको 1 साल या 2 साल तक रख सकते हैं डिपॉजिट
बिल्कुल
उस तरह का है सर।
जी भसीन जी
आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन डिजिटल दे रहे हैं तो आप अपना घर में बैठ के डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बार बार आप ब्रांच बैंक जाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
या जी भसीन जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और लगातार इसमें कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है तकनीकी रूप से तरक्की हम डे बाय डे करते जा रहे हैं और बिग डेटा का भी इस्तेमाल बैंकिंग में तो पूरे जोर शोर से होता है तो आने वाली जो राहें हैं किस तरह से देखते हैं बैंकिंग को आप?
देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन अभी बैक ऑफिस में तो आ चुका है बैंकों में अब धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि जैसे चैटबॉट है कस्टमर अपने अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आंसर आता है या मोबाइल पे आप कुछ टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो देखो आर्टिफिशियल ही रहेगा ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं बन सकता और जहां तक बैंकिंग का सवाल है कस्टमर ह्यूमन बीइंग है और बैंकर भी ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन रिलेशन रहेगा बट हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऐसी चीजें हैं जिसमें डिसीजन नहीं लिया जा सकता वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चले जाएगा कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए और बाकी जो है बैंकिंग ट्रस्ट तो हमारा रहेगा ही तो बिग डाटा इसलिए कि कस्टमर के डाटा से हम क्रॉस सेलिंग करते हैं कस्टमर को FD चाहिए इंश्योरेंस चाहिए 360 डिग्री फीडबैक देते हैं हम उसको।
जी मैरी जी आप इस पर क्या कहना चाहेंगी?
हाँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तो ऑलरेडी AI इज ऑलरेडी देयर इन द बैंक ओके तो उसी की वजह से व्हेनेवर इवन इफ यू गो ऑनलाइन ऑल्सो एनी क्वेश्चन आप पूछेंगे तो आपको इमीडिएटली यूजिंग AI आपका पूरा रिजल्ट आ रहा है और अभी क्या है वो AI यूज करके वो बिग डाटा यूज करके वी आर एबल टू नो द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर ये कौन सा कस्टमर अभी क्या स्पेंड कर सकता है वो कौन सा कस्टमर जो हमको क्रॉस सेल करेगा वो डिपॉजिट दे सकता है या इस तरह का कस्टमर उसका ट्रांजैक्शन पैटर्न देख के इसको हाउसिंग लोन की कोई जरूरत होगा या कार लोन की जरूरत होगा तो उस कस्टमर का बिहेवियरल पैटर्न यूजिंग AI ही हम ये सब निकाल सकते हैं एंड दे आर एबल टू इम्प्रूव बोथ फॉर द कस्टमर एंड फॉर द बैंक।
और भसीन जी हमारे श्रोताओं को चलते चलते आप क्या सलाह देना चाहेंगे सेफ बैंकिंग के लिए?
या वही है कि आपका बैंक खाता जो आपका कस्टमर बैंकर है वो आपके साथ है हमेशा अपनी बैंकिंग को सेफ रखिए अपने ब्रांच हेड से या ब्रांच से ऑफिसर से मिलते रहिए है ना क्योंकि उनसे मिलेंगे बात करेंगे तो आपको नई नई स्कीम्स के बारे में पता चलेगा या केस स्टडीज होती है कैसे फ्रॉड हुआ या जो हमारे मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम शेयर करते हैं तो ये कि अपना बचत खाता है अपनी मेहनत की कमाई है तो सेफ रखिए डिजिटल पे जाइए बट डिजिटल से ज्यादा अपना ह्यूमन टच और ब्रांच विजिट्स वगैरह पे वो जरूरी है तो अपना दोनों तरफ अपने पैसे को बचाना है और आगे बैंकिंग को भी आगे लेके जाना है। धन्यवाद।
और श्रोताओं फिलहाल कार्यक्रम का निर्धारित समय समाप्ति की ओर हो चला है तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं और आज की चर्चा और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक संचालन मैरी साग्या धनपाल और भारतीय बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र भसीन आप दोनों को धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद।
तो श्रोताओं एक नई मुलाकात के वादे के साथ अनुमति दीजिए निखिल को कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं संपन्न करने की फिर मिलेंगे। नमस्कार।